ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम आठवां स्कंद 22वां अध्याय। अध्याय का नाम है बलि महाराज द्वारा आत्मसमर्पण। श्लोक संख्या 12 से 14 तक। तो श्लोक संख्या 14 बोर्ड पर लिखा है, मैं 12 और 13 का पहले उच्चारण करता हूँ। शिशु का उवाच तस्येतं भाषमाणस्य प्रहलादो भगवत प्रिय आजगामा कुरुश्रेष्ठ राका पतिरिवो स्थिता। अनुवाद, सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कुरुश्रेष्ठ, जब बलि महाराज का इस प्रकार अपने भाग्य की प्रशंसा कर रहे थे तो भगवान के परम प्रिय भक्त प्रहलाद महाराज वहां प्रकट हुए, मानो रात्रि में चंद्रमा उदय हुआ। तमिंद्र सेना स्वपिता महम श्रिया विराजमानम नयनात ते क्षणम प्रांशुम विशंगांबर मंजतस्विषम प्रलंब बाहुम शुभ गर्ष भवेक्षतम। बलि महाराज ने परम भाग्यशाली व्यक्ति अपने पितामह प्रहलाद को देखा, जिनका श्यामल शरीर आंखों के अंजन जैसा लग रहा था। उनका लंबा भव्य शरीर पितामह धारण किए था, उनकी भुजाएं लंबी थी, उनकी सुंदर आंखें कमल की पंखड़ियों के समान थी, वे सबके अत्यंत प्रिय तथा मोहक थे। श्लोक नंबर 14। तस्मै बलिर्वारुण पाशयंत्रिता समाहरणं नोपजहार पूर्ववत् ननाम मूर्धान शुविलोल लोचन सव्रीडनीचे नमुखो बभूवः तस्मै बलिर्वारुण पाशयंत्रिता समार्हणं नोपजहार पूर्ववत् ननाम मूर्ध्ना शुविलोल लोचना सव्रीड निचिन् मुखो बभूवः तस्मै बलिर्वारुण पाशयंत्रिता समाहरणोपजहार पूर्ववत् ननाम मूर्ध्ना शुविविलोल लोचना सव्रीण निचिन्न मुखो बभूवः। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की तस्मै प्रहलाद महाराज को बलि महाराज ने वारुण पाश द्वारा बांधा गया, समहरणम उपयुक्त समान नहीं उपजहार प्रदान किया, पूर्ववत पहले की तरह ननाम प्रणाम किया, मूर्धना सिर के बल अश्रु विलोल लोचना अश्रुपूरित नेत्र सव्रीड शर्म सहित नीचीना नीचा मुखा मुख बभूवः हो गया। अनुवाद, वरुण पाश से बंधे होने से बलि महाराज पहले की भांति प्रहलाद महाराज को भली भांति सम्मान नहीं दे पाए। उन्होंने केवल सिर के द्वारा प्रणाम किया, उनके नेत्र अश्रुपूरित थे तथा लज्जा से उनका सिर नीचा था। तात्पर्य, चूंकि बलि महाराज को भगवान वामन देव ने बंदी बना लिया था, अतः वे निस्संदेह अपराधी माने जाने के योग्य थे और बलि महाराज गंभीरता पूर्वक अनुभव भी कर रहे थे कि वे भगवान के अपराधी हैं। बलराम महाराज को निश्चित रूप से यह अच्छा नहीं लगा होगा, इसीलिए मलि महाराज लज्जा से अपना सर नीचे किए थे। हरे कृष्णा, आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मलि महाराज द्वारा आत्मसमर्पण बहुत ही शिक्षाप्रद प्रसंग है। मलि महाराज 12 महाजनों में से एक है और हमें सिखाते हैं कि आत्मनिवेदन कैसे किया जाता है। आत्मनिवेदन का अर्थ है अपना सब कुछ भी दे दिया और अपने आप को भी दे दिया, और महाजन का अर्थ है कि जो हम अपने आचरण से सिखाएं कि धर्म का पालन कैसे करते हैं हर परिस्थिति में। हम देखते हैं जो भागवत में 12 महाजनों का वर्णन है, हर एक महाजन ने अपने व्यवहार से एक विकट विकट परिस्थितियों में, अलग अलग परिस्थितियों में कैसे उन्होंने भगवान की भक्ति की, तो ये हमें सीखने को मिलता है। श्रीमद् भागवतम जैसे पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं, इसे बुक ऑफ केस स्टडीज। हमारे जीवन की ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसका हमें श्रीमद् भागवतम में उदाहरण ना मिले, और महाजन लोग वो उदाहरण स्थापित करते हैं, इसलिए बताया गया महाजना गिंगता सब पंथा। धर्म का अर्थ है साधारण भाषा में क्या करनी है क्या अकरणीय है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कोई बोलेगा ये तो अच्छी बात है, हर कोई अपनी अपनी समझ से सोचता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें जो विशेष बात है, धर्मम तो साक्षात भगवत परिणितम, भगवान की इच्छा के अनुसार क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये हर परिस्थिति में जानना और उसका पालन करना ये आसान नहीं है। धर्म से तत्व निहितम गुहायाम, बहुत ही गुहे तत्व है, ये आसानी से समझ में नहीं आता, इसलिए क्या करना है महाजन ये कथा से बनता, जैसे महाजनों ने व्यवहार किया उसी बताए पथ पे चलना है। तो हम देखेंगे कि बलि महाराज की स्थिति है कोई साधारण स्थिति नहीं है। अगर इसका थोड़ा सा भी जो बलि महाराज के साथ वामन देव जी ने किया, हमारे जीवन में थोड़ा सा भी ऐसा कुछ हो जाए तो हम तो बिल्कुल विमोड़ित हो जाएंगे। लेकिन बलि महाराज ने किस प्रकार से अपना संयम बना के रखा और किस प्रकार से उनका आचरण है, ये हमारे लिए अचिंतनीय है, हम सोच भी नहीं सकते। जिस प्रकार से भगवान के कार्यकलाप अचिंतनीय हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों के कार्यकलाप भी अचिंतनीय है। हम तो केवल उनकी चर्चा करके उनके प्रति हृदय में प्रशंसा विकसित करके अपना शुद्धिकरण कर सकते हैं, अचिंतनीय है, हम सोच भी नहीं सकते कोई इस प्रकार भी ऐसी परिस्थिति में आचरण कर सकता है। वामन देव जी आए एक बटू के रूप में, ब्रह्मचारी बनकर आए, बड़ी मासूमियत से 3 छोटे छोटे पग मांगे। बलि महाराज को लग रहा था इसकी मति विकसित नहीं है, किससे क्या मांग रहा है मालूम भी नहीं है, मांगना भी नहीं आता, लेकिन बाद में मालूम चला पूरा त्रिविक्रम रूप धारण कर लिया। कोई हमारे सामने ऐसा करे तो कितना क्रोध आएगा, हम लोग हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। इतिहास में इससे पहले भी लोगों ने धोखे दिए हैं, लेकिन जो भगवान धोखा देते हैं तो लोग उनको पूछते हैं। रावण भी भिक्षुक बन के आया था सीता मैया को, और फिर उसने अपना अपना विकराल रूप दिखाया 10 सिर वाला। इसी ढंग से इंद्र भी पृथ्वी महाराज के यज्ञ में सन्यासी का रूप धारण करके आए थे और उसका अश्व चुरा के ले आते थे। तो उनका तो हम गुणगान नहीं करते, उनकी निंदा करते हैं, लेकिन यहाँ वामन देव जी ने तथा कभी धोखा दिया, लेकिन बलि महाराज भी इसको धोखा नहीं देख रहे, बलि महाराज इसको कृपा के रूप में देख रहे हैं। बड़ी विचित्र बात है, कोई आपको धोखा दे, आपके घर में कोई नॉक करे, बोले थोड़ा सा आटा दे दीजिए दाल दे दीजिए, और थोड़े देर में पूरे घर के अंदर घुस के पूरे घर को हड़प ले, तो आप क्या मानेंगे, कृपा है? नहीं, निश्चित रूप से। और लेकिन क्योंकि ये भगवान है इसलिए ये कृपा है, गॉड मीन्स ऑल गुड। तो बलि महाराज हम देख रहे हैं इस श्लोक में वरुण पाश द्वारा बंधे हुए हैं, कहाँ वो पहले तीनों लोकों के स्वामी बन गए और अब वरुण पाश में कैदी की तरह बंधे हुए हैं, अपराधी की तरह। और इस श्लोक में बता रहे हैं कि तभी उनके पितामह प्रहलाद महाराज जो कि महाजन है वो आए। प्रहलाद महाराज के सुंदर देह का वर्णन किया है, कैसे श्यामल शरीर उनका आंखों के अंजन जैसा था, लंबी भव्य शरीर पीताम्बर को धारण किया हुआ, लंबी भुजाएं, सुंदर आंखें कमल की तरह, और सबके अत्यंत प्रिय और मोहक लग रहे थे। लेकिन बलि महाराज ने उनको देखा तो शर्म से अपना सर झुका लिया। और पहले बताया है कि समरहवम ना उपजाहर पूर्ववत, जिस ढंग से वो पहले अपने पितामह को प्रणाम करते थे, सकता है दंडवत प्रणाम करते हो, लेकिन अब वो नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो बंधे हुए थे। फिर उन्होंने कैसे उनको आदर दिया, अपना सर झुका के। तो बलि महाराज दिखा रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं कि इस विकट परिस्थिति में भी वो पूरा सदाचार का पालन कर रहे हैं। हम पूरा नहीं झुक सकते, प्रणाम नहीं कर सकते, जितना कर सकते हैं उतना तो करें, है ना, ये दिखा रहे हैं। आजकल भक्तों के बीच में काफ़ी फैशन हो गया है, धन्वर प्रणाम प्रभु धन्वर प्रणाम, ठीक ना। कई बार तो हमारे उसमें एक भक्त हैं हमारे, राकेश अमराय प्रभु, वो तो कहते हैं इसी भी क्या जरूरत है, दूर से ये दिखा दिया वंशाकल्प हो, भी दिखा दो टाइम नहीं है, दूर से दिखा दो भी और चलो बस वंशाकल्प हो गया, युग जहाँ से यूँ कर दो तो कई बार हमारा शरीर भी स्वस्थ है तब भी हम प्रणाम करने में हिचकिचाहट करते हैं, है ना। लेकिन अभी भी हम देखते हैं प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं, कई इतने वृद्ध हैं, जब भी आते हैं प्रणाम करते हैं, झुकने में मुश्किल है फिर भी। तो जब तक हम कर सकते हैं हमें पूरे सदाचार का प्रणाम करना, प्रभुपाद भागवतम के तात्पर्य में लिख रहे हैं प्रणाम करना तो भक्त का परम कर्तव्य है, है ना। एक बार प्रारंभिक वर्षों में एक शिष्य ने प्रभुपाद से कहा, ये मेरे से फॉर्मेलिटी नहीं होती, तो दोगलापन है, मैं इस व्यक्ति को पसंद नहीं करता, मैं क्यों प्रणाम करूँ, कोई भाव ही नहीं है अंदर। प्रभुपाद ने बोला प्रणाम करते रहो, भाव अपने आप आ जाएगा। तो ये सदाचार का पालन प्रहलाद महाराज कर रहे हैं, बड़ी महाराज कर रहे हैं, सर झुका के उनको प्रणाम कर रहे हैं। इसी ढंग से हम देखते हैं भीष्म पितामह भी बहुत निकट परिस्थिति में थे, तीरों की शैया पे थे और उनके इस अंत्यलीला को देखने के लिए बड़े बड़े ऋषिगण पूरे ब्रह्मांड से इकट्ठे हो गए और उन सबका वो आदर सत्कार कैसे करें, खुद तो इतनी पीड़ादायक स्थिति में है। लेकिन वहाँ भी भीष्म पितामह वाणी से उनका गुणगान कर रहे हैं, सर थोड़ा हिला रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनका आदर दे रहे हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी अपने अंत्यलीला में कितनी पीड़ा में थे और जब डॉक्टर उनको देखने आता था तो प्रभुपाद उनसे पूछते थे, डॉक्टर हाउ आर यू, डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए, बोले किसी और व्यक्ति को ऐसा रोग होता तो चिल्ला रहा होता, लेकिन ये मुझसे पूछ रहे हैं हाउ आर यू। तो इस ढंग से हम देखते हैं और इसी ढंग से शिला प्रभुपाद जब ऐसी अंत स्थिति में थे तो एक युवा शिष्य थे जो प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे थे तो बड़े अजीब दृष्टि से करते थे, प्रभुपाद बिल्कुल स्केलेटन बन गए थे, हड्डियों का ढांचा, और वो चारे देख रहे थे। तो प्रभुपाद ने उनकी तरफ देखा और समझ गए इनके मन में क्या गुजर रहा है। प्रभुपाद ने उस स्थिति में भी उनको प्रचार किया, डोंट थिंक दिस विल नॉट हैपन टू यू, ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा भी शरीर एक दिन ऐसा हो जाएगा। तो भक्तगण हर परिस्थिति में इस धर्म का पालन करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं। उसके बाद वो बता रहे हैं उनके नेत्र अश्रुपूरित थे, वो लज्जा से उनका सर नीचा था, सव्रीड नीचन मुखून मुखो बभूह। ये बड़ी विशेष बात है, इससे पिछले श्लोक में सातवें श्लोक में बलि महाराज कह रहे हैं बद्धश्च वारुणे पाशय नाति व्रीडे नाचव्यथे, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं वरुष पास द्वारा बनने के बाद, पिछले कई श्लोकों में प्रार्थना कर रहे थे, बोले थे बद्धश्च वारुणे पाशय, आपने वरुण पास से मुझे बांध लिया है लेकिन मैं क्या महसूस नहीं कर रहा, नाति व्रीडे मुझे कोई शर्म नहीं आ रही, ना बड़े पूरे ब्रह्मांड के स्वामी आज बंध गए, अरेस्ट हो गए, है ना, अरेस्टेड बड़ी सनसनीखेज खबर है, बलि महाराज अरेस्टेड, है ना, मुझे शर्म नहीं आ रही, ना चा व्यथे ना ही ना परेशान हूं, मैं ना खुश भी नहीं हूं। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इस विकट परिस्थिति में, इस अटपटी परिस्थिति में भी मैं जान पा रहा हूं आपका कुछ छिपा हुआ उद्देश्य है, हिडन पर्पस है। बस बलि महाराज को वो पूरा विश्वास है कि हाँ दिखने में लग रहा है इन्होंने मेरे साथ धोखा किया, धोखा नहीं है, कृपा है, क्योंकि भगवान कभी गलत कर ही नहीं सकते, धोखा तो है ही नहीं, कृपा है और कुछ विशेष उद्देश्य, विशेष उद्देश्य है, बहुत सीखने की बात है। हमारे जीवन में तो उथल पुथल मची रहती है, बहुत ही जगत है ही उथल पुथल का, श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव। अगर कोई व्यक्ति आशा रखे नहीं मेरा जीवन बिल्कुल स्मूथ चलता रहे, कोई उथल पुथल नहीं, असंभव, उथल पुथल तो रहेगी, लेकिन जब हमारी योजना के अनुसार कार्य हो जाते हैं हम कहते हैं भगवान की बहुत कृपा है, जब हमारी योजना के साथ कार्य नहीं होता तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं, बलि महाराज की सारी योजनाएं खत्म, लेकिन बलि महाराज कह रहे नहीं भगवान की कृपा है। इंग्लिश में कहावत है मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस. ये कहावत साधारण व्यक्ति के लिए है. भक्त क्या कहेगा, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस एंड गिव्स बेटर प्लान, प्रपोजेस बेटर प्लान. हमारे प्लान से बेटर प्लान भगवान प्रपोज करते हैं, ये पूरा विश्वास होना चाहिए. कौन ज्यादा बुद्धिमान है, मैं कि भगवान? निश्चित रूप से. तो मेरा प्लानिंग कुछ हो सकता है, भगवान उसको पूरा नहीं करेंगे. भगवान का हमारे लिए कुछ दूसरा प्लान है जो कि निश्चित रूप से मेरे प्लान से बेटर प्लान है. तो बलि महाराज को पूरा विश्वास था कुछ प्लान है भगवान का, कोई हिडन उद्देश्य है, मुझे अभी मालूम नहीं चल रहा. हमारी सीमित सी मति, हमें क्या पता चलेगा भगवान का क्या प्लान है. कुछ तो प्लान है लेकिन खैर कृपा बस. तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं, भक्त कृपा के विरुद्ध कभी कंप्लेंट करेगा? किसी को कृपा मिल रही है, कोई आपको प्रसाद दे रहा है, कंप्लेंट करेगा क्या दे रहे हो भाई? नहीं, खुश होगा. तो कृपा है. आध्यात्मिक जीवन में जब हम कृष्ण की भक्ति में जुड़ते हैं, कभी अन्याय होता ही नहीं. अरे अन्याय नहीं होता ना, ये पूरा कृपा से भरा हुआ है. हाँ, कृपा के रूप अलग अलग है. वो वाली हमें कैसी कृपा हो रही है समझ में नहीं आती. अगर भक्त कृपा को देखना समझ जाए, समझना सीख जाए, उसी मात्रा में वो तरक्की करेगा. बस यही समझ में आ जाए कृपा है. अन्याय लगता है कई बार, अन्याय नहीं है, वो भी कृपा है. भगवान का कुछ हिडन मोटिव है, पर्पज है, तो वो समझना. इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान की कृपा को समझने के लिए भी कृपा चाहिए. भगवान तो बहुत चतुर है, कैसे कृपा करते हैं मालूम नहीं, कभी दे के कभी छीन के, तो हमें समझ में नहीं आता. लेकिन बलि महाराज समझ रहे, यही महाजन है, दिखा रहे कृपा. ये तो ये हमारे कृष्णा कॉन्शियस हमारे जीवन का एक एसेंशियल प्रिंसिपल है, बेसिक सिद्धांत है. कृष्णा लव्स में, बस उनसे प्रेम करते हैं. उथल पुथल करेंगे, मारेंगे पीटेंगे, लेकिन मेरे प्रेम वश ही कर रहे हैं, अच्छा ही करेंगे. तो इसलिए बलि महाराज को पूरा विश्वास था कि ये, इसलिए मैं लज्जित नहीं हूँ. वहां बोल रहे नाति व्रीड़े नाच व्यथा, आपने वरुण पास से बांध दिया है, मैं लज्जित नहीं हूं. लेकिन यहां प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, लेकिन बलि महाराज गंभीरता पूर्वक ये अनुभव कर रहे थे कि मैं अपराधी, अपराधी अनुभव कर रहे थे अपने आप को. क्या अपराध किया उन्होंने? वचन पूरा नहीं कर पाए, ये बड़ी अजीब सी बात है. सब कुछ हर लिया भगवान ने, सारा कॉन्टैक्ट उन्होंने तोड़ा. कहाँ एक वामन वटु बन के आए थे और इतना बड़ा रूप धारण कर लिया. वचन आपने तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा. लेकिन वो क्या देख रहे, मैंने तोड़ा वचन, मैं आपको तीन पक जमीन नहीं दे पाया. तो जितनी मात्रा में भक्त भक्ति में प्रगति करता है, उतनी मात्रा में वो आत्मावलोकन करता है, अपने अंदर दोषों को देखता है. दूसरों में नहीं देखे, आपने भी दोष देखा है. अरे मैं अपना वचन पूरा नहीं कर पाया, इन्होंने तो, ये तो उनकी कृपा है, ये तो असीमित है, ये तो उनको तो समझ नहीं पाएंगे. लेकिन हाँ, मैंने जो वचन दिया था इसको मैं पूरा नहीं कर पाया. इस ढंग से वो अपने आपको ऑफेंडर मान रहे हैं. भक्त अपने अंदर दोष देखते हैं, जैसे कि श्री भक्ति सिंह सेठ ठाकुर महाराज बचपन में ही 2 या 3 वर्ष के थे, आम खा लिया जो कि ऑफर नहीं हुआ था. उनके पिता भक्तिनाथ ठाकुर जी ने बताया, ये आपने क्या कर लिया, पहले भगवान को ऑफर करते हैं. इतना पश्चाताप, पूरा जीवन कहते रहे आई एम एन ऑफेंडर. जब भी उनको के सामने कोई आम लेके जाता था, नो आई एम एन ऑफेंडर, है ना, अपने अंदर ये दोष देख रहे हैं. और भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर महाराज अपनी शिक्षाओं में बताते हैं कि जब दूसरे के दोष हमें बहुत विस्मित कर रहे हो, बिविल्डर कर रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा कैसा भक्त है, कितने दोष हैं इसमें, ये इनको कोई भक्त कहेगा? कई बार हम लोग पूछते हैं, पौजी वो कोई वैष्णव है? ऐसे थोड़ी होते हैं वैष्णव, इतने दोष उनमें. जब मैं ऐसा दिखाई दे तो भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर महाराज कहते हैं, थोड़ा रुको, धैर्य रखो, थोड़ा आत्मावलोकन करो, अपने अंदर छाको, आपके अंदर बहुत दोष है. कोई आपका नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना आप अपना नुकसान पहुंचा सकते हो. हम सोचते हैं उसका ये दोषपूर्ण व्यवहार मेरे को नुकसान पहुंचाएगा, नहीं, हम ही अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं. तो बलि महाराज अपने ही अंदर दोष देख रहे हैं कि मैंने जो वचन दिया था मैं उसको पूरा नहीं कर पाया, इसलिए अपने को ऑफेंडर महसूस कर रहे हैं. सब कुछ तो भगवान ने हर लिया, कुछ था ही नहीं देने को. अंत में ये कह लिया कि सर पे पांव रख लो, क्या बचा है? फिर भी कह रहे नहीं, जो वचन दिया था पूरा नहीं किया. इससे हम ये सीख सकते हैं कि उन्नत भक्त भगवान के प्रति की हुई सेवा के प्रति कभी भी संतुष्ट नहीं होते। इतना कर दिया और कितना करूं, बहुत है। और क्या क्या लोगे भाई, आपने सब कुछ तो हर लिया, अब आपका शरीर इतना बड़ा है, दो कदम में आपने सर में हर लिया, तो मैं क्या करूं, कुछ बचा ही नहीं। नहीं, इतना सब कुछ ले लिया लेकिन फिर भी कह रहे हैं अभी भी देना है मुझे, मैं देना चाहता हूं, मैं दे नहीं पा रहा, देना था, मैंने वचन दिया था, इसलिए वो अपने आप को अपराधी महसूस कर रहे हैं। इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने जब श्रील रूप गोस्वामी जी को वृंदावन में भेजा और उनको आदेश दिए थे कि आप वहाँ जाके अर्चकों की स्थापना करें, शास्त्रों को लिखें, रूप गोस्वामी पाद जी ने खूब शास्त्र लिखे वहाँ पे, लेकिन अभी तक वो चैतन्य महाप्रभु की एक इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहे थे कि अर्चकों की स्थापना। तो बहुत दुखी थे कि मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा, पूरा नहीं कर पा रहा। सोचिए, कोई नया भक्त होता बोलते बोला ठीक है शास्त्र तो लिख लिए बहुत अच्छे, वो बहुत शोक में थे और इस टाइम से शोक कर रहे थे। तभी एक ग्वाल बाल आए वहाँ पे, भगवान उनके शोक को समझ गए, वो बोले आओ यहाँ पे मैं तुम्हें एक चमत्कार दिखाता हूँ। एक टीला पे एक गाय आती है और नीचे दूध देती है, और उस टीला को जब खोदा तो उसमें से कौन मिले, गोविंद देव जी। तो इस ढंग से संतुष्ट नहीं होते भक्त कि हाँ बहुत कर दिया आप, इतना बहुत है ना। जैसे एक बार परम पूज्य ने गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज ने बहुत साल पहले ईस्ट ऑफ कैलाश में युवा एक भक्त को दीक्षा दी, तो दीक्षा के बाद वो सर्दियों के दिन थे, मॉर्निंग वॉक में निकले महाराज ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर के पास ही पार्क है, वहाँ पार्क मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, साथ में युवा भक्त भी सुबह के 10:30 का समय था, वॉकिंग कर रहे थे, महाराज चैंटिंग कर रहे थे, ये आराम से माला लटका के चल रहे थे। माँ ने बोला यू कैन ऑल्सो चैंट, बोला महाराज 16 वाला कर ली मैंने शिष्य गुरु से आगे है, कर चुका हूँ। तो महाराज ने बोला 16 से ज़्यादा करना अपराध नहीं है, और भी कर सकते हैं। तो संतुष्ट है, 16 वाला कर लिया मैं संतुष्ट हूँ। तो नया भक्त इस तरफ हम बलि महाराज का आचरण देखें, एक तरफ कनिष्ठ अधिकारी का आचरण देखें। हम सेवा करते हैं तो हम सोचते हैं भैया गुरु जब तक देखेगा नहीं, कोई पहचानेंगे नहीं, फायदा क्या उस सेवा का। बलि महाराज को ये नहीं, बलि महाराज तो अपने कमी देख रहे हैं, सेवा पूरी नहीं कर पाया। एक बार जब 1972 में प्रभुपाद भारत में आए थे तो वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में वो भक्ति रसामृत सिंधु पर प्रवचन दे रहे थे, तो दोपहर का समय होता था तो बगीचे में बैठ के राधा दामोदर मंदिर के पास वहाँ वो प्रवचन करते थे, तो सभी शिष्य सुन रहे थे। और उनके अभी जो सेक्रेटरी बने थे श्रुतकीर्ति प्रभु, उनको खाली एक महीना ही हुआ था, नए नए सेक्रेटरी बने थे और वो सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड करते थे। अब वहाँ पे बहुत मक्खियाँ थी और कोई पंखा था नहीं, और प्रभुपाद बार बार मक्खियाँ से कर रहे थे, तो प्रभुपाद ने बोला गेट सम फैन, तो श्रुतकीर्ति प्रभु उठे और चामर लेके आए और चामर करने लगे, और उनको लगा वाह क्या सेवा कर रहा हूँ मैं, अपने गुरु को चामर कर रहा हूँ, ये तो आरती के समान है। तो बड़े स्टाइलिश तरीके से चामर यूं यूं घुमा रहे थे, यूं बड़े यूं करके, लेकिन ऐसे ऐसे तो कर रहे थे बड़े स्टाइलिश तरीके से, उनको लगा आरती है ये तो, मेरे गुरुदेव की आरती है, लेकिन मक्खियां वही भिनभिना रही थी। और मक्खियों को हटाने के लिए वहाँ प्रभुपाद ने बोला था कि चामर करो, और प्रभुपाद खुद यूं बार बार कर रहे थे और वो अपना स्टाइलिश कर रहे थे, वाह क्या सेवा हो रही है, और बड़ा खुश हो रहे थे। प्रभुपाद ने बोला गेट सम इंटेलिजेंट पर्सन यार, किसी बुद्धिमान व्यक्ति को लाओ, क्या है। और वो बेचारे इतने शर्मिंदा हो गए। तो सामने एक और भक्त थे जो श्रुतकीर्ति प्रभु लिख रहे हैं, बहुत ही क्रेजी टाइप सा व्यक्ति था, वेरी पिक्यूलियर एंड क्रेजी टाइप ऑफ डिवोटी, प्रभु उसको इशारा किया, नाम था कुंज बिहारी। वो आए और उन्होंने तो मक्खियों पे अत्याचार कर दिया, यूं यूं यूं, और वो श्रुतकीर्ति सामने बैठ गए। प्रभुपाल श्रुतकीर्ति तरफ देखे और मुस्कुराए, हाँ ये सही तरीका है। तो बेचारे बोल रहे श्रुतकीर्ति को लिख रहे हैं फुली डिवेस्टेटेड, क्या मैं कर रहा था, तब उनको रियलाइज हुआ है ना। तो हमें सेवा मिलती है, हम सोचते हैं वाह कि देखो क्या हम सेवा कर रहे हैं, बलि महाराज को ऐसा कुछ अनुभव नहीं। इसी प्रकार से शीला प्रभुपाद जब विदेश में थे तो एक माता जी थी जिनका नाम शीलावती माता जी, तो उस समय अभी नया नया शुरू हुआ था, तो भक्तों को जब ड्यूटीज के लिए वो भोग लेके आते थे तो उसको कवर नहीं करते, भोग की प्लेट कवर नहीं होती थी। तो शीलावती माता जी ने बहुत रिसर्च की, बोले तो मैं अब डीटी वर्षी में कुछ इम्प्रूवमेंट करूँगी, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर सिल्क का नया कवर बनाया, उसको कवर करके करना शुरू किया। और उनको मालूम चला कि प्रभुपाद आ रहे हैं और संडे को उनका लेक्चर है, तो बोला प्रभुपाद देखेंगे कितना खुश होंगे कि मैंने नया कवर बनाया है, डीटी प्लेट को कवर कर रही हूँ।
तो आल्टर ऐसे था जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का, और प्रभुपाद बिल्कुल आल्टर के साथ थे, मतलब यहाँ आल्टर है, प्रभु यहाँ बैठे हैं, और संडे का दोपहर का दिन है, लेक्चर शुरू होने से पहले भोग ऑफर करते थे और पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ। तो वो शीलावती माता जी आई, नया सुंदर सा कवर सिल्क का, मतलब अब तो प्रभुपाद देखेंगे, और प्रभुपाद की नज़र सामने ही है, वो देख ही नहीं रहे, मतलब कोई बात नहीं, भोग तो लगाना ही है। तो उन्होंने रखा, और उसके आगे क्या, भोग लगाने के लिए पर्दा करना पड़ता था, तो उन्होंने क्या किया, उस कवर को हटा लिया और फिर पर्दा आगे करने गए। तभी प्रभुपाद माइक में बोले, तुमने नया कवर बनाया है लेकिन पर्दा करने से पहले उठा लिया, मूर्ख कहेंगे। तो वो ये सोचे थे कब प्रभुपाद देखेंगे, प्रभुपाद देखेंगे, लेकिन सेवा थी वो क्या था कि इसीलिए सेवा थी कि भोग को ढकना है और सबके ही सामने पर्दा कवर हटा के वो पर्दा कर रहे थे। तो इस प्रकार से जो उन्नत भक्त है वो जितनी भी सेवा कर रहे हैं उसे संतुष्ट नहीं होते, और सेवा करनी है ना? कहा जाता है ना, तीन चीज़ों से हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, कौन कौन सी हैं? हाँ, पति या पत्नी से, और इनकम जितनी है, और जो खाने को मिल जाए बस, है ना, उन चीज़ों में संतुष्ट होना चाहिए हमेशा। उन तीन चीज़ों में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्या? सेवा से, हरि नाम से, और दान देने से। बहुत दान दे दिया, बहुत सेवा कर ली, बहुत जप कर ली, नहीं, इनमें कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, ये हमेशा करते रहना चाहिए। और उन तीन चीज़ों में आज के जीवन में बिल्कुल उल्टी परिस्थितियाँ हैं, है ना। 16 माला के लिए संतुष्ट, बहुत मैक्सिमम, जितना दे दिया दान उतना बहुत है, इतनी सेवा ठीक है, और बाकी तीन चीज़ों में हमेशा हमें आना कानी है। लेकिन भले माना दिखा रहे हैं, इतनी सेवा करने के बाद भी असंतुष्ट है, अपने आप को अपराधी महसूस कर रहे हैं कि मुझे और सेवा करनी चाहिए। तो ये उनकी मनस्थिति है, वो अपने आप को अपराधी महसूस कर रहे हैं कि जो मैंने वचन दिया उसको मैं पूरा नहीं कर पाया, और वो अपने आप को चीटेड महसूस नहीं कर रहे बल्कि कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं कि भगवान ने ये कृपा मुझ पर की। और उस समय जब प्रहलाद महाराज आते हैं तो इस समय वो लज्जित महसूस कर रहे हैं, सव्रीड़ा, अब उनका मुख नीचे हो जाता है और आंखों में आंसू है। तो अब वो क्यों लज्जित महसूस कर रहे हैं प्रहलाद महाराज के सामने? तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, प्रहलाद महाराज को निश्चित रूप से ये अच्छा नहीं लगा होगा। क्या अच्छा नहीं लगा होगा? कि ये भगवान के अपराधी हैं, ये अच्छा, ये नहीं अच्छा लगा होगा कि देखो ये मेरा पोता जो है इसको क्यों बांधा हुआ है, है ना। एक साधारण व्यक्ति देखेगा, अरे मेरे पोते की ये दुर्दशा, ये अच्छा नहीं लगेगा, नहीं, ये नहीं लगा, ये कि इन्होंने जो भगवान को वचन दिया था उसको पूरा नहीं किया। और श्री विष्णु चक्र ठाकुर पाल लिख रहे हैं कि बलि महाराज ये सोचकर शर्मिंदा हो रहे हैं प्रहलाद महाराज को देखते ही, कि आपने जो मुझे शिक्षा दी थी कि दान देते समय गर्वित नहीं होना चाहिए, मेरे अंदर प्राइड था जब मैं इनको तीन पग भूमि दे रहा था, क्या मांग रहे छोटी सी, तो वो मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, इसलिए मैं शर्मिंदा हूँ। तो ये जो लज्जा, ये भक्तों का एक गुण है। भगवद गीता के 16वें अध्याय में जब भगवान देवी संपदा का वर्णन करते हैं पहले तीन श्लोकों में, तो दूसरे श्लोक में लज्जा बता रहे हैं, ये देवताओं का गुण है ना, अहिंसा सत्यम अक्रोधो त्याग शांति रूपेशनम दया भूतेश्व लोलुप्तम मार्दोम हरीर चापलम। हरीर का मतलब लज्जा है ना, ये लज्जा भक्तों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है ना। ये लज्जा का आवरण हट गया तो फिर मर्यादा टूट जाती है भक्तों के बीच में व्यवहार, विशेषकर वरिष्ठ भक्तों से, जो हमसे सीनियर हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, उन भक्तों के साथ व्यवहार में लज्जा का होना बहुत आवश्यक है। आज के इस आधुनिक वातावरण में निर्लज्ज होने की ट्रेनिंग दी जाती है, बी ओपन, हम ओपनली कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन एक तरीके के साथ, निर्लज्ज होकर नहीं। तो लज्जा होना बहुत आवश्यक है ना, जैसे कि हम देखते हैं शिला प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद अपने शिष्यों को पत्र में लिख रहे हैं कि हालांकि प्रभुपाद ने इतना सब कुछ किया अपने गुरु महाराज के लिए, ये प्रभुपाद फिर भी सोच रहे हैं लज्जित कैसे हो रहे हैं, कि मेरे गुरु जानते थे कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि उनके मिशन की सेवा कर पाऊँ, इसीलिए उन्होंने आप जैसे शिष्यों को मेरे पास भेजा कि मेरे को सहयोग करें कि उनके मिशन को मैं पूरा कर सकूं। मेरे गुरु मेरी अयोग्यताओं को जानते हैं, है ना, ये अपने आप वो लज्जा एक्सप्रेस कर रहे हैं। हम कब भक्तों के बीच में लज्जा को त्यागते हैं? देखी जाएगी ऐसी की तैसी, कोई शर्म की बात नहीं है, किन परिस्थिति में सकते। हाँ, भोगने की या फिर छाने की इच्छा है या दिखाने की इच्छा है, गर्वित हैं हम, बहुत पफ्ड अप हैं, और उसमें होकर हम लज्जा को त्याग कर हम किसी भी भक्त को कैसे भी करेक्ट कर सकते हैं, है ना, उसको करेक्शन करेंगे, या फिर बहुत कामुक हो जाए तो हम निर्लज हो जाते हैं, जैसे कि शिव जी मोहिनी जी के पीछे भागे, सभी ऋषियों के बीच में स्वयं पार्वती माता सामने थी, उनके साथ थी, उनके उनके होते हुए उनके बीच में निर्लज होकर लीला में दिखा रहे हैं, हालांकि उसके पीछे और अंतरंग कारण है। इसी ढंग से देखते हैं अहंकार वर्ष दक्ष प्रजापति की सभा में शिव जी आए तो दक्ष अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मान रहे हैं, किसने मुझे प्रणाम किया, और कितना निर्लज होकर उन्होंने शिव जी को अपमानित किया, है ना। या फिर हम देखते हैं निर्लज होकर रामचंद्रपुरी अपने गुरु माधवेंद्रपुरी को अंतिम दिशा में उनको करेक्ट कर रहे हैं, ये क्या आप रो रहे हो, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना सोचती ना कांक्षती, है ना, जैसे ये कुछ उदाहरण है। तो ये हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, जैसे फैमिलिटी ब्रीड्स कंटेंट, जब बहुत ज़्यादा फैमिलिटी हो जाती है तो लज्जा का पर्दा चला जाता है और उसमें फिर हमसे मर्यादा का उल्लंघन होता है। तो बलि महाराज पूरे लज्जित थे और साथ में ये भी था कि कहाँ आप एक महाजन और कहाँ आप इतने उन्नत भक्त, आपके वचन को सत्य साबित करने के लिए भगवान अवतरित हुए, सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितुम। आपने आपसे हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि आपके भगवान कहाँ हैं, आपने कहा सब जगह हैं। हिरण्यकश्यपु ने पूछा क्या इस खंभे में भी हैं, आपने बोला हाँ। क्यों आपने ऐसा बोला, भगवान को खंभे से प्रकट होना पड़ा, ये आपकी स्थिति थी। और कहाँ मेरी स्थिति है, भगवान मेरे सामने आए और मुझसे मांग रहे हैं और मैंने वचन भी दिया फिर भी पूरा नहीं कर पाए, कितनी लज्जा की बात है। आप जैसे पितामह को पाकर मेरा ऐसा व्यवहार, ये लज्जा की बात है, तो लज्जित हो रहे हैं। तो भक्तों को ये परामर्श दिया जाता है, भक्तों के साथ व्यवहार करें तो लज्जा का, लेकिन क्या होता है जब प्रचार में जाते हैं तब तो लज्जा करनी चाहिए, तब शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है। भक्तों के साथ कई बार उल्टा होता है, बाहर जाते हैं प्रचार करने के लिए, नहीं नहीं प्रभु जी हम नहीं करेंगे, नहीं नहीं, और भक्तों के बीच में कोई लज्जा नहीं, तो है ना, लाइन ऑन चेज एंड लैम्प एट होम, प्रभुपाद कहा करते थे। और लज्जा में रहने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा शर्मा के सर जगा के घूमते रहे, बड़े शर्मीले भक्त हैं। लज्जा का मतलब ये नहीं है कि जी मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, मैं तो कुछ ही काम का नहीं हूँ, ये अर्थ नहीं है, हमेशा डिप्रेस रहें, ये लज्जा नहीं है। लज्जा का मतलब ये नहीं है कि भक्ति सेवा में हमारा उत्साह कम हो जाए, पूरे उत्साहित रहें और उत्साहपूर्वक सेवा करें, लेकिन जब आचरण की बात आती है, अपना खुद का गुणगान या बिना एटिकेट्स का पालन किए करेक्शन या फिर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, जैसे कि इंद्रदेव ने यज्ञ किया और विश्वरूप का वध कर दिया, तो वृतासुर उनको बोल रहे हैं तुम निर्लज हो, निर्लज, आपने सारी दया खो दी, सारी लज्जा चली गई आपकी कि आपने मेरे भाई का वध कर दिया, क्यों, केवल अपने स्वर्ग पे शासन करने के लिए, तो आपके अंदर लज्जा त्याग दी। तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम कुछ भी करते हैं उसमें कोई लज्जा नहीं, तो ये भक्तों का आचरण नहीं होता। भक्त लोग हर परिस्थिति में मर्यादा देखते हैं और विशेषकर जो हमसे उन्नत भक्त हैं उनके सामने एक लज्जा का पर्दा हमेशा अति आवश्यक है। तो हम देख सकते हैं ये प्रहलाद महाराज और बलि महाराज का ये बहुत सुंदर, दोनों ही महाजन हैं, और कैसे अपने आचरण से बलि महाराज हमें सिखा रहे हैं कि एक महाजन हर परिस्थिति में कैसा आचरण करता है। तो आज ये बलि महाराज ने अपने आचरण से सिखाया इस विकट परिस्थिति में उनका आचरण। तो क्या धार्मिक सिद्धांत आप सीखे हैं इस प्रसंग से? जो आज के श्लोक से अपने जीवन में उतारने के लिए अपमान चला। हाँ, बलि महाराज ने हमें ये धार्मिक, महाजन है उन्हें हमें ये बताया, हाँ ये एक धार्मिक सिद्धांत है, तो क्या सीखे, कौन कौन से सिद्धांत सीखे। हाँ, भगवान के प्रति जितनी भी सेवा की गई उससे हम संतुष्ट नहीं होंगे, ज्यादा से ज्यादा सेवा करें और अपने वचन पे अटल रहना चाहिए। अगर दूसरे वाला धोखा दे रहा है, दूसरे वाला अपने वचन से मुकर रहा है, हाँ भक्तों को और भगवान को दिए हुए वचन पे अटल रहे, गुरु को दिए हुए वचन पे अटल रहे, जो दीक्षा का हमारा वचन है उस पे हम अटल रहे। यस माता जी, हाँ जी, हाँ जब दूसरों में दोष दिख रहे होते हैं हम उस पे याद ध्यान देते हैं, तब थोड़ा सब्र रखें और अपने में देखें तो मालूम चलेगा हमारे में भी बहुत दोष हैं, हमारे दोष हमें ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे बल्कि दूसरों के दोष से। गुड, और हाँ प्रभु जी कह रहे हैं हर परिस्थिति में हम सदाचार का पालन करने का प्रयास करें। गुड, और कौन कह रहे थे, हर परिस्थिति में आसान नहीं है प्रयास करें, और क्या हमें हेल्प करेगा जानने के लिए कि हर परिस्थिति में भगवान की कृपा है, क्या हमने चर्चा की, क्या हमें जानने को इससे मदद करेगा, कृष्णा लव्स अस और हमारे प्लान से कोई बेटर प्लान है। हाँ सोच समझ के वचन थे कि वो पूरा कर पाएंगे भी नहीं, और हाँ जी हाथ खड़ा करके होते हैं दान में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बहुत दान दे दिया दान में, सेवा में, जप में, और हम देखते हैं। हाँ जी माता जी, हर परिस्थिति में, हाँ प्रभु जी ने बोल दिया इसको, हम देखते हैं कि जो बलि महाराज हैं ये नहीं चाहते कि वो कुछ ध्यान के केंद्र बने, इतना सब कुछ उन्होंने समर्पण किया, लेकिन भाई महाराज यही सोच रहे कि मैंने भी कुछ नहीं दिया। अभी हमारे पीछे महात्मा प्रभु आए थे, उन्होंने एक सेमिनार लिया था ह्यूमन नीड्स, सिक्स ह्यूमन नीड्स, उसमें एक था पहली नीड थी सिग्निफिकेंस, हर व्यक्ति हर मनुष्य ये अनुभव करना चाहता है कि हाँ उसका कुछ, उसका अस्तित्व है, वो सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है। और भक्ति में भी हम देखते हैं हाँ कि रोग रिकग्नाइज करें, रिकग्निशन दें कि मैं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ, ठीक है ये नीड होना, लेकिन इसमें कई बार एक अटेंशन सिंकिंग सिंड्रोम होता है, हाँ मेरे सब ध्यान दें अटेंशन ना हो, लेकिन जो भक्त हैं वो सारा सारा सिग्निफिकेंस क्या देते हैं, कृष्ण को देते हैं। जब कृष्ण को मोस्ट सिग्निफिकेंट बनाएंगे, सारा ध्यान कृष्ण को देंगे, अटेंशन देंगे, तो अपने आप ही हमारे पे अटेंशन आएगा। जैसे कि भक्त कह रहे थे अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम, अगर यही हमारे जीवन का वो है ASS, देन वी मेक एस आउट ऑफ आवर सेल्फ, है ना, तो जब ये टेंडेंसी आए बोलो क्या, इट्स एन एस, ए डबल एस, अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम, तुरंत इसको पहचाने और सारा अटेंशन किसको दे, कृष्ण को और प्रभुपाद को देने का प्रयास करें, ठीक है। तो ये इस श्लोक में हमको चर्चा की, किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी तो बात कर सकते।
हरे कृष्ण, जीव के साथ कभी ऐसी परिस्थिति होती है, कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती है कई बार, तो जीव उस परिस्थिति में भूल जाता है कि भगवान ने कोई परिस्थिति उसके लिए दी है तो उसके हित के लिए है, प्रैक्टिकली वो भूल जाता है, तो उसको कैसे याद रखें कि उसके हित के लिए है या नहीं है ये।
जब हम समझ नहीं पा रहे कि ये भगवान की कृपा है कि नहीं है, भक्तों का संग करें, भक्तों के संग में रहें, श्रवण करते रहे, अध्ययन करते रहे, वो मति आएगी। ऐसी परिस्थिति में भक्तों के संग से दूर हो जाएंगे तो बिल्कुल नहीं लगेगा कृपा है, अत्याचार लगेगा, भक्तों के संग में रहेंगे, सुनते रहेंगे, श्रवण करते रहेंगे, तो धीरे धीरे इसको समझेंगे, ध्यान रखें।
थैंक यू।
हाँ जी,
हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छे से बताया।
प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि जैसे आपने बताया कि जो महाजन होते हैं वो अपने आचरण से सिखाते हैं, आपने भीष्म पितामह का एक एग्जांपल दिया था, तो इसमें मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और आप इस पर प्रकाश डालें कि जैसे कि भीष्म पितामह के एक महाजन थे, लेकिन जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब भी वो मौजूद थे, तो उस परिस्थिति में मतलब उन्होंने इस तरह का एक महाजन से ये अपेक्षा नहीं की जाती, तो इसको कैसे हम मतलब समझने का जानने का प्रयास करें।
सबसे फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, अक्सर लोग यही बोलते हैं, जैसे हम चाहते हैं भीष्म पितामह महाजन है, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, तो कहाँ था उनका धर्म जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, है ना। तो ये समझने की बात है, क्योंकि भगवान उनको एक इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं महाभारत के युद्ध के लिए। महाजनों को इस्तेमाल करेंगे हमारे भगवान, कि अगर ऐसा नहीं किया सही समय पे, अगर वो रोक देते तो युद्ध कहाँ होता, युद्ध नहीं होना था। द्रौपदी का अपमान हुआ, भगवान ने वहीं पे प्रण लिया कि जिस प्रकार से द्रौपदी के बाल खोले गए हैं, सभी कौरवों की स्त्री के बाल मैं खोलूँगा, खुद भगवान ने प्रण लिया, इनको तो मारना ही मारना है, मुझे युद्ध तो होगा ही होगा, भगवान ने निश्चित कर लिया। तो ये भगवान के प्लान से, कृष्णा प्लान, और महाजन जो हैं वो पूरा सहयोग देते हैं, और धर्म से तत्व निहित बहुत गुहे हैं, हमें समझ में नहीं आते, है ना। तो उसे सारण भाषा हम ये समझ सकते हैं कि भीष्म पितामह ने अपने कुछ आचरण से ये भी सिखाया कि क्या नहीं करना चाहिए, ये भी समझ सकते हैं कि दुर्योधन जैसे व्यक्ति का हमेशा उन्होंने साथ दिया, है ना, साथ दिया तो उसका ये हालत हुआ, ये भी कह सकते हैं। कई भक्तों से हमने सुना तो ये बताते हैं कि भगवान की लीला है, उसी में सहयोग दिया हमने, हाँ दुर्योधन में सहयोग दिया, लेकिन उसके अलावा भीष्मा का जो भगवान से विशेष रस था वो दुर्योधन का नहीं था। भीष्म पितामह उस तरफ भी होते हुए, ये एक ऐसी परिस्थिति है जो जीवन में बहुत कठिन है कि तथाकथित धर्म के विरुद्ध हैं फिर भी पूरे भक्त हैं, भगवान के साथ एक विशेष शौर्य रस का, वीर रस का आस्वादन हो रहा, ये दुर्योधन का थोड़ी था, ये स्पेशल प्रोरोगेटिव था भीष्म पितामह का, कि वो भगवान पे तीर भी चला रहे थे तो भगवान को बहुत प्रिय लग रहे थे, ये विशेष रस, कैसे तीर चलाने का मौका मिलता अगर युद्ध ना होता था।
दो क्वेश्चन से बढ़े, एक पहला क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा प्रकाश डालें ऑन द स्टेट ऑफ लाइक इक्विलिब्रियम, जिसको लेके दरअसल डिवोटीज के लिए बार बार बोला जाता है, जैसे अभी बलि महाराज का केस है, ना शोक है ना बहुत ज़्यादा खुश है ना, लाइक इस स्टेट के लिए जो है काफ़ी बार जो है कहते इसके लिए एम करें, ये एक सिम्टम है, आई मीन कई बार कन्फ्यूजन में भी ऐसा होता है, डजंट नो हाउ टू रिएक्ट, सो स्टेट ऑफ शॉक में भी आदमी होता है तो वी डजंट नो हाउ टू रिएक्ट, so and I understand that is because the result of extreme tamoguni doesn't know how to react, so how to differentiate and
मैं समझता हूँ कि बलि महाराज का यहाँ पे उन्होंने कोई अपना संभाव नहीं दिखाया, बल्कि अपनी एक्सटेसी व्यक्त की है, बलि महाराज एक्सटेसी, बलि महाराज ऐसा नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं, बलि महाराज पूरा अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनकी जो प्रार्थना है फुल ऑफ इमोशंस है, आपकी कृपा है और अपने आप को बहुत गर्वित महसूस कर रहे हैं कि आपने मुझ पर कृपा की, असुर हूँ फिर भी आपने मुझ पर कृपा की, वो ऐसा नहीं है कि चुपचाप खड़े हैं, ठीक है भगवान, इट्स नॉट लाइक मायावादी जो भी है बस खाली मुस्कुरा रहे हैं, और यहाँ रो रहे हैं, सर झुका रहे हैं अपने शर्म से, हाँ, लेकिन उसके लिए एक संभाव होना, धीर की स्थिति होना सबसे जरूरी है भक्ति में, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत में यह धीर, प्रभुपाद भी अपने तात्पर्य में रखते हैं भक्ति में आध्यात्मिक जीवन उन्नति का है, पहली स्टेज है धीर, फिर सन्यासी, फिर परवर्जी का आचार्य, तीन स्थिति है। तो धीर तो सबसे पहला आदेश, अर्जुन को सबसे पहला आदेश था धीर, मात्र स्पर्शस्तु कौन्ते है देहिनोस्मिन यथा देह कौम आराम योग तथा देहांत प्राप्ति धीर तत्र नाम हो जाते, धीर नहीं रहेंगे अधीर व्यक्ति के मन में ज्ञान प्रवेश करेगा ही नहीं, अधीर व्यक्ति ना चैंटिंग कर पाएगा, ना शास्त्रों को सुन पाएगा, ना पढ़ पाएगा, ना समझ पाएगा, ना कंटेम्पलेट कर पाएगा, वो अधीर ही रहेगा, हालांकि इन सब की प्रैक्टिस करते करते ही वो धीर होगा, लेकिन धीर के स्टेज पे आना, इक्विनिमिटी में आना बहुत जरूरी है, लेकिन उस धीरता का एक्सप्रेशन अलग अलग होगा, जैसे बलि महाराज इतनी बड़ी एक इतना बड़ा हो गया, एकदम उल्टी परिस्थिति आ गई। घबराए नहीं, ये धीरता है, बल्कि इसको एक बहुत बड़ा फेवर देख रहे हैं। धीर तो होगा न्यूट्रल गियर में, ये न्यूट्रल नहीं है, ये तो पॉजिटिव है। वाह, क्या कृपा करती भगवान आपने।
जैसे आपने बताया कि जैसी कोई भक्ति में आता है उसका कोई अन्याय नहीं होता, सब कृपा से भरा हुआ है। जैसे बलि महाराज का भी प्रसंग है, बिल्कुल एक्सट्रीम सिचुएशन है, बिल्कुल हाइट पे ले जाके टॉप से बिल्कुल बॉटम में तक। ऐसे अगर जनरल वर्ल्ड में भी अगर ऐसे बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस होते हैं, जैसे रेप केसेस होते हैं, अब्यूज केसेस होते हैं, तो अगर हम ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं तो उनको किस प्रकार से प्रेजेंट करना चाहिए, खासकर ये प्रसंग बलि महाराज का, ये अन्याय इस दुनिया में अन्याय होता है नहीं होता, या ये कर्मों का फल है या नहीं है। तो
बलि महाराज को कोई कर्मों का फल नहीं मिल रहा, निश्चित कर्मों का फल नहीं है, तो भगवान के साथ उनका विशेष आदान प्रदान। आम व्यक्ति के साथ कुछ दुर्घटना घटती है, निश्चित उसे वो कर्मों का फल है।
बहुत भक्तों के साथ भी ऐसी घटनाएं घटती है।
हाँ, भक्तों के जीवन में जो दुख आते हैं उसके बहुत बड़ी उसकी स्थिति के अनुसार उसके कारण होंगे, उसकी क्या स्थिति है। कई बार भगवान खुद अपने भक्तों के जीवन में घुस के उनको दुख देते हैं, जैसे भीष्म पितामह यही तो प्रार्थना कर रहे हैं, हम समझ नहीं पाएंगे कैसे पांडवों के जीवन में आपके होते हुए इतने दुख आए, ये कर्मों का फल तो हो ही नहीं सकता, सब आपका ही प्लान है और आपके प्लान समझ में नहीं आता। जिस भक्त के साथ वो खुद सच्चिदानंद हो, भक्तों को इतना रुला रहे हो, समझ नहीं आया आपका प्लान क्या है। लेकिन खाली पांडवों के साथ हो गया, मैं अपनी माला सही ढंग से नहीं कर पा रहा, भगवान क्या प्लान है तुम्हारा। तो मैं तो ये नए भक्त अभी शुरू किए है, तब भी मैं भी यमराज जी के अंडर में नहीं हूँ, मेरे भी कर्मों के फल भगवान ही देते हैं, कृष्ण ही हमारे जीवन में कर्मों के फल को स्प्रिंकल करते हैं। चल अब तू ये ले ले, खुद देंगे, खुद देते हैं, उसको भी कृपा ही मानेंगे, कितना देना है, कब देना है, टोन डाउन करना है उसको कृष्ण करते हैं। लेकिन एक अभक्त के जीवन में जो उतार चढ़ाव है वो सब कर्मों का फल है।
उसको हम अन्याय कह सकते हैं, वो भी तो एक तरह से न्याय है या भगवान की कृपा ही है जो उसको फल मिल रहा है।
बिल्कुल, निश्चित रूप से एक तरीके से देखा जाए तो, एक तरीके से देखा जाए तो कर्मों का फल भी देना भगवान का न्याय है। और भगवान अगर न्याय करने लगे तो बहुत ज़्यादा क्रूर हो सकते हैं, फिर भी भगवान कृपा ही करते हैं। एक असुर पे भी भगवान कृपा ही करते हैं, कृष्ण का नेचर है मर्सीफुल, वो मर्सी के फॉर्म्स अलग अलग हैं। अगर भगवान सीरियसली लेना चले एक एक कर्म का हमारा देखें तो हमारा तो कोई स्कोप ही नहीं है, कोई स्कोप ही नहीं है। तो भगवान का कृपा है, उनके हृदय में माफ कर देते हैं, काम करते हैं फॉर एवरीवन।
भगवान को पता था कि बलि महाराज ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, फिर भी भगवान को दंड देना चाह रहे थे अपराधी समझ के, और बाद में उन्होंने कृपा भी कर दी, इसको कैसे समझे।
हाँ, यही तो है, समझ में ना बड़ा मुश्किल है। भगवान को तो पूरा ग्लोरीफाई कर रहे हैं, बलि महाराज को एक्सट्रीम तक ले गए और ऐसा व्यवहार रखा कि ऐसा नहीं कि दिखा रहा हूँ कृपा करो, एकदम कहाँ नहीं दिया तुमने मेरे को, तुम नर्कगामी बनोगे, शुक्राचार्य तुम्हें श्राप दिया, पूरा होगा वो, कहाँ है मेरा तीसरा कदम, कहाँ रखना है। बलि महाराज भी महसूस कर पूरा क्लाइमेक्स तक ले गए और फिर बोला चलो सूतल के स्वामी और मैं तुम्हारा चौकीदार। भगवान है, यही तो है, और पूरे पटकते हैं करते हैं लेकिन भक्त घबराते नहीं। इस बोले भक्ति चारों स्वामी महाराज अपने लेक्चर में उदाहरण देते हैं, माँ अपने छोटे बच्चे को लेती है, ऊपर उठाती है, फेंकती है, बच्चा क्या करता है, किलकारियां मारता है, रोता है कि क्या कर रही है माँ, और जोर से ऊपर उछालती है, और जोर से हंसता है, क्योंकि बच्चे को पूरा कॉन्फिडेंस है ऊपर छोड़ के माँ ऐसे नहीं कर लेगी, पकड़ेगी पकड़ेगी, है ना। तो बलि महाराज की भी एक्सटेंसिव बढ़ती जा रही है, और पंख और लो से भगवान भी कर रहे हैं, ये दोनों का खेल है, बस हम खाली ये समझ आए हमारे को आनंद है बस। ठीक है, कम्युनिकेट क्या, कम्युनिकेट तो बहुत छोटी चीज़ है, एक दूसरे को आनंद दे रहे हैं, एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। यस यू वांट टू
जब ये भागवत प्रवचन में, क्योंकि भागवत प्रवचन में एक ये प्रसंग उठता है, तो प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना भी थोड़ा जो एक्सपीरियंस है, कि अगर वो टॉपिक उस बंदे ने खुद नहीं पढ़ा हो, इज नॉट एबल टू सो मच रिलिश एक्चुअली, दैट्स वन ऑफ द रीजंस, एंड यू हैव रेड द इट योरसेल्फ एंड देन यू हियर इट फ्रॉम अदर, यू मेक सेंस अबाउट टॉपिक इज जस्ट न्यू टू यू, इट लुक्स हाउ कम इज पॉसिबल, लॉजिक से वो मिलता ही नहीं है, बिकॉज वो एक पूरा मोशन है, ये तो एक श्लोक है जो कि पीछे और आगे का पूरा बैकग्राउंड लेके, आई गेस देन कैन डू फुल जस्टिस।
वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, थैंक यू। प्रभु जी की बात समझे आप, आपने कई बार क्या हफ्ते में एक बार ही आते होंगे या दो बार ही आते होंगे, और उसके बाद आते ही इतना अजीब सा वाद व्यवहार देख लिया, क्या है भाई, सब कुछ हर लिया, ऊपर से बांध भी दिया, ऊपर से वो कृपा मान रहे, समझ में नहीं आ रहा मेरे को, उसको ग्लोरीफाई भी कर रहे हैं, क्या बात है भगवान। तो ये बात है, तो जब खुद पढ़ा होता है किसी ने, पूरा समझे होंगे, पूरा प्रसंग के विस्तार में पढ़ा होता है, तो उसको हमें अप्रिशिएट करता है, वेरी गुड पॉइंट। इसलिए पढ़ना चाहिए। एक बार ये हमारे प्रभुपाद जी के शिष्य ने बोला था कि जब हम सुनने आते हैं, तो हमने पूछा कि महाराज कैसे हम अच्छा हियरिंग करें भागवतम क्लास में, तो उन्होंने बोला, मैं अभी तक पालन नहीं कर पाया, लेकिन आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप उससे कोई पालन करेगा बहुत अच्छा होगा। तो बोला कि जब क्लास में सुनने जाओ, तो ऐसे सुनने जाओ या क्लास देने जा रहे हो, उस श्लोक की तैयारी करके जाओ पूरी, तब आप जो वक्ता बोलेगा फिर आप और रिलिश करोगे, वाह, तब वो इंप्रेशन पूरा पड़ेगा। हम ऐसे ही आते हैं, चलो चलो भगवान, आई मीन आप लोग आते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है, आ जाते हैं आप सबका, आप महान व्यक्ति है, आप इतने बिजी होने के बाद ये टाइम निकाल के आते हैं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसका और अच्छा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एटलीस्ट हम पढ़ के आ जाएं, या इसकी समरी होती है चैप्टर की वो पढ़ के आ जाएं, तो उसमें जो हम इसका लाभ उठा पाएंगे बहुत ज़्यादा होगा। इट्स अ वेरी नाइस पॉइंट रेज बाय, ठीक है। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, गौर प्रेमानंद की।